समीक्षणाद् विषाद दर्शनात् ते जिज्ञासा आत्मज्ञानात् सा तदधिकारार्थं कर्मयोगः सफलासक्तिवर्जनेन ईश्वरार्पणेन च स्वधर्मानुष्ठानम् ततः गुरुसेवाम् श्रद्धा इन्द्रियजय तत्परताभिः ज्ञानप्राप्तिः सन्न्यासः ज्ञाननिष्ठार्थम् ध्यानयोगेन साम् ध्यानयोगेन साम् ध्यानयोगेन साम् ध्यान योग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के विशिष्ट विचारों को हम सुन रहे हैं। ध्यान योग का लक्ष्य क्या है वो जान लिया। एकात्मता की अनुभूति, अद्वैत साक्षात्कार। ध्यान योग में अधिकारी बनने के लिए क्या करना चाहिए? कर्म योग का आश्रय लें। और कब तक कर्म करना है, कब कर्म छोड़ना है, इसका भी वर्णन हमने सुना। और फिर योगी के जो लक्षण तथा विभाग होता है वो भी 9वें श्लोक तक हम लोगों ने विचार कर लिया। तीन विभाग यहां पर स्पष्ट होता है, कर्म योगी, ध्यान योगी और युक्त योगी। ध्यान योग में प्रवेश के अधिकारी वह हैं जो कर्म योग के द्वारा अपने चित्त को पर्याप्त रूप से परिष्कृत कर लिया और भोग की आकांक्षा से और कर्म की वासना से, संकल्प से अपने को मुक्त कर लिया ना, ये बात हो गई। तो यहां पर एक बात हम आपको बतलाना चाहते हैं। कुछ ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ, ये जो तृतीय श्लोक है, आरुरुक्षोर मुनेर योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। तो इससे एक इस श्लोक के बड़े भारी प्रभाव हैं, उसके बहुत सारे उसमें से बातें निकल आती हैं। स्त्रियों को भी भगवत प्राप्ति के अधिकार हैं, ये तो गीताजी में बारंबार बताया ना। ज्ञान प्राप्ति में भी उनका अधिकार है, इसमें भी प्रायः द्विमत नहीं है। संन्यास ले सकते कि नहीं ले सकते, इसमें थोड़ी झगड़ा है। कुछ मामलों में रेस्ट्रिक्शन रखते हैं। मुझे ये सुनाई पड़ा कि यहां कुछ ऐसा चल रहा है आप लोगों का, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो एक बार हरिद्वार में साधना सदन के ज्ञान यज्ञ में उस समय त्यागमूर्ति जी थे, तो इस पर कुछ मंथन हुआ। तो बड़े बड़े सब महापुरुष थे, कहा कि देखो भक्ति में और विवेक में कोई अनधिकार नहीं है, कर्म में अधिकार अनधिकार की विशेष चर्चा है। जिसके पास अंतर्योग्यता है वो भक्ति में जा सकता है, भक्ति में तो सबको ही जा सकता है, और जिसके पास अंतर्योग्यता है वो ज्ञान में जा सकता है। लेकिन कर्म संस्कार जो हैं उसमें विवाद है कि, और संन्यास तो एक विधि होती है, कुछ मंत्र उच्चारण करना होता है, उसमें रिचुअल्स होते हैं, तो इसलिए कई महात्माओं का यह मानना था कि स्त्रियों का संन्यास में अधिकार नहीं है। आपके यहां तो उपनिषद पढ़ सकते कि नहीं, इसी का विवाद था, तो हम उसी संदर्भ में एक दो शब्द कहेंगे, ज्यादा समय तो है नहीं। मैंने निवेदन किया बड़ी नम्रता से, मैं तो बहुत छोटा था उन लोगों के सामने, मैंने कहा महाराज स्त्रियों को ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है। बोले हाँ, इसमें तो कोई बात नहीं है, गार्गी ने मैत्रेयी ने ऐसे हमारे कई, और इसके लिए निषेध नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार चित्त शुद्धि के बिना हो जाएगा क्या महाराज? कहा कि नहीं होगा। तो आरुरुक्ष योगी कर्म करेगा, लेकिन कर्म करने मात्र से, माने कर्म माने भक्ति के साथ करेगा, उतने मात्र से ब्रह्मज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। ये तो आप लोग सुन ही रहे हैं। तो कर्मों को छोड़ करके समस्त कर्तव्यों से निवृत्त हो करके एकमात्र ईश्वर के चिंतन में संलग्न होना, अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो स्त्री हो या पुरुष हो, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कहा कि हां ठीक, अंतर संन्यास उनका हो सकता है, अर्थात ऐसा वैराग्य हो जाए और सारे कर्मों से वो, लेकिन ये कपड़ा जो है लेना और घर छोड़कर के भिक्षा मांगना, ये बड़ा खतरा है। हमने कहा महाराज खतरा भी अगर कोई उठाने के लिए तैयार है तब अच्छा दूसरी बात ये है, अब अंतर संन्यास का अधिकार मान लिया और बाह्य संन्यास में आपको आपत्ति है, तो खाली इतना ही मैं कहूंगा, कपड़े तो मिलते ही हैं दुकान में, आप नहीं दोगे, और आजकल तो देखता हूं कि माताएं खूब हमारे रंग के कपड़े पहनते हैं, तो गेरुआ तो पहन ही सकते हैं। और विधि अगर आप विधि पूर्वक परमिशन नहीं देते हैं तो अधिक से अधिक यही होगा कि हमारी मां बहनें, क्योंकि आजकल बहुत ऐसे अविवाहित भी रहने लगे और इस प्रकार के, तो एक हमारे क्रिश्चियन भाई सब ले जाएंगे, ब्रह्मा कुमारियां ले जाएंगी, तो आपके जो असल में जो हकदार थे, और संन्यास ज्ञान की साधना में एक महत्वपूर्ण एक संस्कार माना जाता है, तो इसलिए मैंने यही श्लोक के आधार पर सारी बात रखी थी। तो महात्माओं ने चुप तो हो गया, और कोई उसके ऊपर ज्यादा आर्गुमेंट हुआ नहीं। तो मेरा तो ऐसे ही मानना है कि हमेशा से ये दो पक्ष रहा ही, एक रूढ़िवादी पक्ष, वो भी ठीक है, अच्छा है, कुछ लोग ऐसे होना चाहिए, और एक जो है युग के अनुरूप समाज को कुछ परिवर्तन करते हुए, ठीक है कुछ बीच में मध्य युग में नहीं था लेकिन प्राचीन युग में तो था, और वर्तमान युग में अगर ऐसा वातावरण बन रहा है तो जो भी आशंकाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनके लिए कोई रास्ता होनी चाहिए। माने मेरा निवेदन इतना ही है कि आप कर्म कर सकते हो, और जब उसका टास्क पूरा हो जाए, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है तो कर्म छोड़ सकते हैं, और बाकी आश्रमों में जाना या ना जाना तो एकांत में बैठ के अपने कमरे में ही ध्यान लगाओ, लेकिन ऐसे जाओ तो अच्छा होता है वातावरण अगर ठीक हो तो। खैर ये एक प्रासंगिक विचार था। अब आइए हम लोग अब मूल जगह पर आ रहे हैं, ध्यान योगे न सा, ये ध्यान योग, अभी तो ये सब तैयारी और ये सब चल रहा है माने अधिकारी बनने का। अब इसमें भी ये दसवें श्लोक से भगवान शुरू कर रहे हैं, युक्त योगी बनने के लिए क्या करना होगा, सुनो। योगी जुंजीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी माने ध्यान करने वाला, यहां पर क्यों कर्म को छोड़ने की बात आ गई, ध्यायी जो ध्यान लगा रहा है, सततम जुंजीत, सदा अपने मन को आत्मानम जुंजीत माने समाहित करे, एकाग्र करे। कहां पर करे, रहस्य स्थितः, एकांत स्थान को बोलते रहस्य, एकांत में ध्यान लगाया जाए। वैसे तो उपाय न हो तो भीड़ में भी लगाना पड़ता है लेकिन एकांत स्थान ध्यान के लिए अनुकूल है। एक बार अवधेश जी के साथ हमारा कुछ ऐसे चर्चा हुई तो हम सुबह सुबह गंगा घाट पर जाते हैं ना, वहां पर बनारस में तो काफी लोग आते हैं, तो एकांत तो नहीं मिलता लेकिन गंगा जी के सामने बैठने से, और जब सूर्य का उदय हो रहा है पूर्व दिशा से, बड़ा वहां बनारस की जो सुबह है ना वो बड़े प्रख्यात है, सारे दुनिया से लोग आते हैं देखने में, और लोग बड़े डायनामिक है, महाराज हल्ला गुल्ला सब चलता रहता है। तो बोले कि इसमें आप कैसे ध्यान लगाते हो, क्या करते हो। हमने कहा इसलिए कह रहा हूं कि शायद आपको कुछ मदद मिले, इसलिए मैंने ये कहा। पहले तो बड़ी दिक्कत आती थी लेकिन फिर भी मैंने देखा कि आश्रम घर में बैठने से वहां ज्यादा हमको थोड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन ज्यादा मिलते हैं, तो हमने कहा कि ऐसा करिए किसी एक व्यक्ति के आवाज पर आप ध्यान मत दीजिए, और देखना कि सारे हल्ला गुल्ला मिल करके ना एक कोई ऐसे साउंड बन रहा है, एक बड़ा जो है पटभूमि बन रही है। कभी आपने महसूस किया कि नहीं, मुझे पता नहीं, जैसे चौपाटी में चले जाओ तो दूर से कैसा मालूम पड़ता है ना, सबका हल्ला गुल्ला आवाज सब मिला करके एक वो सब मर्ज होकर के आपके पास आता है ना, तो एक से वहां पहुंचो और वो देखोगे, फिर हमको तो फिर उसके चाहे साक्षी के रूप में हो चाहे कोई और रूप में परमात्मा में पहुंचना है, हमको तो बहुत ज्यादा कोई डिस्टर्ब करता नहीं है।
तो पहले तो थोड़े उनके नेचर के हिसाब से वो जो है रिफ्यूज किए, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है, बल्कि महीनों के बाद कहा कि वो जो आपने कहा वो बड़ी सही बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एकांत न मिले, इनको तो मिलना ही है क्योंकि ये तो घर छोड़ करके जा रहा है, ये एडवांस साधक है, लेकिन हम सब लोगों के लिए हम कह रहे हैं कभी एकांत न मिले तो इसमें बहुत ज्यादा अपने आप को उत्तेजित करोगे, क्यों नहीं हो रहा है शांत और क्यों नहीं ऐसा साइलेंस बन रहा है, तो उससे तो कोई लाभ तो होगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन आदर्श स्थान है रहस्य स्थित, भाष्यकार ने लिखा महाराज गिरी गुहादौ, चलो हिमालय की गुफा में या गंगा पुलिन में जहां एकांत हो। और एकाकी जाना वहां पर, ध्यान में एकाकित्व बहुत आवश्यक है। भाष्यकार इसका विश्लेषण कई जगह किया, तो वहां पर उनका कहना है कि ऐसे तो जब कोई ध्यान में बैठता है तो अकेला ही तो ध्यान लगाना पड़ेगा, लेकिन कहा कि स्त्री पुत्र परिवार को छोड़ करके अकेला होना चाहिए ध्यान में। यहां पर सीधा सीधा उन्होंने लिख दिया संन्यासं कृत्वा, संन्यास की बात आने ही वाली थी, इसीलिए मैंने आप लोगों को अधिकार की बात बता दिया। तो एकाकी ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है, और खास करके जब गंभीर ध्यान में ही आपको डूब जाना है सारे दुनिया को छोड़ करके, तब तो किसी की सहायता की कोई बात ही नहीं है, माने साथ की। दत्तात्रेय भगवान का अनुभव सुन लीजिए, उन्होंने वो कुमारी से क्या सीखा, 24 गुरु थे ना, तो उन्होंने कहा ना कि जब तक वो कुट रही थी तो आवाज हो रहा था, उनको शर्म आ रहा था, सामने मेहमान बैठे थे, तो तोड़ने लगी खोलने लगी, और जब तक दो भी रहा तब भी कुछ, जब एक ही चूड़ी रहेगी तो कभी कभी, माने ये याद रखना कि बहुत एडवांस साधक के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। ये सब हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा ये जरूरी, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा हो सकता है आपकी मनोदशा, किसी के साथ रहने पर आप ज्यादा प्रोटेक्टेड और निर्भय अनुभव करते हैं, तो आपके मन के लिए वो अनुकूल भी होगा, लेकिन एक समय सब छोड़ना पड़ेगा, उसकी बात हो रही है। इसका भी मैं अपने जीवन से एक अनुभव सुनाऊं, आज भी मुझे बड़ा पछतावा है उस चीज की। किसी आश्रम में मैं गया था, एक महापुरुष के स्थान में, तो कुछ दिन रुका, तो उनकी समाधि में पास बैठ करके लोग ध्यान लगाते हैं, तो एक दिन हमने कहा अच्छा चलो सब लोग लगाते हैं, और स्थान तो बड़ा अच्छा ही है, बड़ा डायनामिक है, और पता नहीं उस दिन क्या था, एकदम बैठते ही जैसे मेरे चित्त को कोई भीतर से यूं खींचने लगे, कहां हम चले जा रहे थे, हमारे भीतर क्या चल रहा है तो हमारे साथी को पता नहीं, हमारे साथ थे कोई महापुरुष, अब उनको जो है कहीं जाने की जल्दी थी, वो बार बार मुझे यूं यूं करे चलिए चलिए, अब मैं मने उनको कुछ कह नहीं सकता और छोड़ नहीं सकता, अंततः मुझे उठना पड़ा, और आज भी मुझे पछतावा है कि मुझे बड़ी कोई डिवाइन एक्सपीरियंस से वंचित होना पड़ा। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूं आपको कि एकाकी शब्द जो है, गीता जी में एक एक शब्द आते हैं ना, उसके इतने सब गहरे, उसके साथ में वो चीजें भाव भरे होते हैं, एकाकी होना बहुत आवश्यक है। एकाकी यत चित्तात्मा, अपने चित्त को और शरीर को संयत कर लो, निराशीह अपरिग्रह, दो चीज और बता दिया, निराशी समस्त आशाएं अभिलाषाएं सांसारिक छोड़ करके बैठो,
और इसके लिए वो जो वैराग्य की बात कुछ हुई ना, वो सब उसी के लिए है। अपरिग्रह दूसरी बात है, परिग्रह नहीं रखना, अपने पास ज्यादा सामान संग्रह नहीं करना, क्योंकि उसकी चिंता लगी रहती है महाराज, है ना। आप लोगों को पता ही है वो कौपिन का वास्ते, एक बाबा के पास दो ही कौपिन था, अब चूहा जो है उसको काटने लगा, चूहा से बचने के लिए बिल्ली को लाना पड़ा, बिल्ली को पालने के लिए गाय लाना पड़ा, गाय को पालने के लिए फैमिली बनानी पड़ी, अब बड़ी जो है बड़ा भारी साम्राज्य स्थापित हो गया। फिर भी उनका कौपिन की चिंता गई कि नहीं मुझे तो पता नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों को तो डर लगता है ना सिक्योरिटी की, कि हमको ये सामान चाहिए सामान चाहिए, लेकिन ये इतना मजबूत हो गया ना वो व्यक्ति जिसकी चर्चा हो रही है। अब देखो तब क्यों नहीं ध्यान लगेगा भैया, है ना, जिनका चित्त ऐसा तैयार हो रहा है। अच्छा, एक शब्द इस श्लोक में और ध्यान दे, प्रायः उस पर ध्यान जाता नहीं है। योगी युंजीत सततम आत्मानम, आत्मा को माने अपने आप को वो समाहित करे, इतना ही है उसका अर्थ। लेकिन यहां पर आत्मानम का अर्थ है अंतःकरणम, भाष्यकार लिखते हैं, और हम लोग लेते हैं मन को, मन को अपने जो ध्येय पदार्थ है उसमें समाहित करे, चाहे वो आत्मा हो। यहां तो आत्मा की ही बात आएगी, छठे अध्याय में जो योग है वो आत्मसत्ता के लिए है। तो इसमें ये आत्मा शब्द का जब भगवान प्रयोग करते हैं तो एक बात ध्यान रखना कि अपने आप को उसमें डुबोने के लिए कह रहे हैं, अर्थात मन जो है, जब हम मन कहते हैं तो अपना एक छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम चिंतन करते ये करते हैं, अपना स्वरूप हम अलग समझते हैं ना अपने आप को, जैसे हमारे पास हाथ है, जैसे आंख है, ऐसे हमारे पास मन है सोचने का, तो अन्य सोच विचार छोड़ करके हम ईश्वर का चिंतन करें ऐसा हम सोचते हैं, यही योग की प्रक्रिया है। परंतु यहां भगवान ने मन के बारे में तो बताएंगे, आत्मा शब्द का जब प्रयोग किया तो आत्मा शब्द से खाली मन को नहीं लगाना, अपने आप को उनके साथ में जोड़ना, आत्मानम जुंजीत। तो आत्मा को कैसे जोड़ोगे अपने आप को, तो आप अभी अपने आप को किसके साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, शरीर के साथ, ठीक, शरीर के साथ, और शरीर भी ये आकाश के साथ और ये वातावरण के साथ। तो ये जो अपना आपा है इसको परमात्मा में या विशुद्ध आत्म सत्ता में जोड़ना है, ध्यान में आ रही है बात, पॉइंट में यही बताना चाहता हूं कि अपने आप को जोड़ना है खाली मन को नहीं, ये थोड़ा स्पष्टता आगे और कर देंगे। अच्छा, अब जो है एकांत स्थान का ही थोड़ा और माने एनवायरमेंट बता रहे, कैसा एनवायरमेंट आदर्श होता है, शुचो देश, वो स्थान पवित्र हो, कुछ स्थान स्वाभाविक रूप से पवित्र होता है, कुछ जो है उसको साफ सफाई करके संस्कृत करके पवित्र बनाया जाता है, है ना। गंगा तट पर चले जाओगे तो स्वाभाविक पवित्र स्थान है, और उसमें भी अगर कुछ ऐसा है आपके तो वो साफ कर लो, अपने घर में जहां ध्यान में बैठते हो उसको पवित्र पहले बनाइए, ये बड़ा आवश्यक है, वो मन को बड़ा सहारा देता है। तो शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः, एक आसन उसमें बैठने का लगाइए। कैसा आसन होना चाहिए, वो आसन आत्मनः अपना ही होना चाहिए। प्रायः हम लोग एक ही आसन में पति भी बैठ जाते, पत्नी भी बैठ जाते, बच्चों भी बैठ, वो ठीक है, लेकिन एक आसन ध्यान के लिए अलग से आपका अपना ही होना चाहिए। माला भी अपनी होनी चाहिए भैया। कुछ चीजें जो है ना वो शेयर करने की नहीं होती है तो इसीलिए तो पहले एकाकी बता दिया। तो आत्मनः आसनम, और वो ज्यादा ऊंचा न हो, नात्युश्रितम, ज्यादा ऊंचा उसको बना लेंगे तो कहीं आपको जो है ना डर लगेगा गिरने का, तो ज्यादा ऊंचा मत बनाइए, और एकदम नीचा भी मत बनाइए। नीचा होगा तो चींटी, बिच्छू, कई चीज आ सकती हैं, तो पृथ्वी से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए जैसे आसन होता है। और कैसा आसन हो बैठने का, तो कहा कि नीचे कुश रखें, उसके ऊपर मृग चर्मा आदि रखें, और उसके ऊपर वस्त्र आसन रखें, कंबल आदि, तो बैठने में भी थोड़ा सा थोड़ा नरम होना चाहिए, लेकिन इतना नरम मत कर लेना कि एकदम ऐसा धंस जाए और शरीर का बैलेंस बिगड़ जाए। तो ये तो बैठने की जगह हो गई महाराज, है ना। और वहां पर जो है क्या करना है, उपविश्य आसने, उस आसन में बैठ जाए, बैठ करके ध्यान लगाएं। इस पर ब्रह्म सूत्र में विचार हुआ, ध्यान ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म ध्यान कैसे करना चाहिए, चलते फिरते करना चाहिए, बैठ के करना चाहिए, सो के करना चाहिए। तो कहा कि भैया ध्यान जो है ना, न तो चलते फिरते न ही सोते हुए। देखो भगवान का स्मरण करते रहो चलते फिरते हर काम में, वो अलग बात है, लेकिन एकाग्र हो जाना है तो चलते फिरते करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सो करके करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा ऐसे ही बैठे बैठे नींद आ जाती है तो सो करके करोगे तो फिर और आलस हो जाएगा। तो सूत्रकार ने बताया आसीनः संभवात्, भैया जो बैठा होता है उसके लिए ध्यान संभव होता है। तो यहां भगवान बता रहे उपविश्य आसने, बैठ करके महाराज, योगम युंज्याद, योग को लगाओ, समाधि लगाओ, और कैसे, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को अन्य चिंतन से ले आओ, अपने चित्त को, इंद्रिय की क्रियाओं को शांत करो और लगाओ। इसका वर्णन अभी अगले श्लोक में हम करेंगे। यहां पर एक शब्द पर ध्यान देना है, आत्मविशुद्धये जुञ्ज्यात्। योग अभ्यास की जरूरत केवल मात्र आत्मशुद्धि के लिए है, चित्त शुद्धि के लिए है। कर्मयोग भी चित्त को शुद्ध करता है, और योगाभ्यास ध्यानाभ्यास भी चित्त को शुद्ध ही करता है। ज्ञान तो भैया ब्रह्म साक्षात्कार तो वेदांत प्रमाण से ही होगा, लेकिन तैयारी के लिए जिस चित्त में ज्ञान आएगा उसकी तैयार करना है। तो माना जाता है तीन दोष होता है हमारे मन में, मल, विक्षेप, आवरण। तो मल क्या है, यही काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, ठीक है। तो कर्म योग से उसकी सफाई हुई, और ये विक्षेप जो निरंतर इसकी अस्थिरता है, आदत पड़ चुका है, इस विक्षेप दोष की निवृत्ति उपासना से, योग से, ध्यान योग से होगा। और चित्त जब एकदम शांत हो जाएगा तो वेदांत प्रमाण, जो वेदांत विचार आपने इतने दिन किया है, निर्णय भी कुछ हुआ है, लेकिन वो साक्षात्कार नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रतिबद्ध हो रहा, चित्त की स्थिति आपकी उसको काम करने नहीं दे रहे हैं। जैसे आपकी आंखें खुली हो, मन कहीं और हो, तो दिखाई पड़ेगा ठीक से, नहीं दिखाई पड़ेगा, तो आंख खराब है आपका, नहीं। इसी प्रकार आपका मन अगर तैयार नहीं है तो वेदांत सुना और ज्ञान नहीं हो रहा है तो वेदांत को ब्लेम नहीं करना। वेदांत तो निश्चित रूप से ज्ञान करेगा, कराएगा, लेकिन तैयार करो अपने आप को, ये जरूरी है।
अच्छा तैयारी भी वेदांत तो सुनते सुनते होता है, ये सब सुनोगे तो धीरे धीरे तैयारी होती है।
अच्छा, अब बैठे कैसे उसका भी बड़ा वर्णन भगवान ने किया। भैया समंग काय शिरोग्रीवंग, ना काय बोलते हैं ये जो बीच वाला हिस्सा है मध्यम भाग इसको, और शिर मस्तक, और जो कंधा है माने यूं भी रह सकता है यूं भी रह सकता है ना, तो मस्तक को सीधा रखे अथवा यूं भी रह सकते यूं भी, तो सीधा रखे और कंधा भी सीधा हो ग्रीवा। और ये आदर्श माना जाता है कि जो रीढ़ है हमारा वो सीधे हो, जिससे पूरे शरीर का वजन जो है ना उस रीढ़ के माध्यम से यहां तक आ रहा है, तो वो शरीर का सबसे बैलेंसिंग पोजीशन है। लेकिन अब हम लोगों को बैठने का आदत पहले से इतना बिगड़ चुका है, तो हो सकता है कि आपको जो है ये सीधे बैठने के एफर्ट में ही इतना मेहनत हो जाए, आगे के लिए आपके पास ऊर्जा ना बचे। तो आपके लिए तो यही है कि भैया कुर्सी में बैठो जिसमें बैठो, लेकिन शरीर का पोजीशन जो है टेंस नहीं हो, रिलैक्स में हो, आराम से बैठो, और जो है यथा संभव उसमें भी जो हमारे खून के प्रवाह हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी ना बॉडी में चलता है ना, उसमें जितना बाधक ना हो करके। अब कपड़ा भी इतना टाइट से हम लोग पहन लेते हैं कई बार, तो ये सब जो है माने शरीर को एक इस पोजीशन में ले आना है, आरामदायक रिलैक्स पोजीशन में ला करके तब ऐसे बैठना चाहिए। और आंखों की दृष्टि जो है ये नासाग्र कहो या समझ लो निकट के, माने ज्यादा ऐसा नहीं खुली होनी नहीं चाहिए, अध खुली हो ऐसा होना चाहिए दृष्टि, क्योंकि ज्यादा खुली होगी देखने लग जाओगे या विक्षेप होगा, बंद कर लेंगे तो उसमें भी ये नींद भी आती है और कल्पना में भी खोते हैं। मैंने तो देखा कि नींद भी समस्या तो है ही है, लेकिन ये आंख बंद करके सोचने में बड़ा मजा आता है तो थोड़ा सा आंख अगर आप खुला रखेंगे तो आपको सजगता बनी रहेगी कि हमको हमें ये करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है हम लोगों को छोटी छोटी चीजों को, क्योंकि हम लोगों के लिए बड़ी छोटी चीज बड़ी हो जाती है, बड़ा मददगार हो जाता है। इधर उधर नहीं देखना, दिशश्च अनवलोकयन, अब जो है वहां पर कैसा क्या करना है वो बता रहे हैं। देखो 14वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्यमाचित्तो युक्त आसीतमात् परः। युक्त आसीत, इस प्रकार से समाहित बनो। कैसे? कहा कि प्रशांत आत्मा, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अंतस प्रशांत हो। कहा कि पहली प्रशांत, अरे महाराज ध्यान तो लगा ही रहे हैं प्रशांत होने के लिए, आप पहली शर्त दे रहे हैं प्रशांत आत्मा हा? तो इसमें ऐसा है। अच्छा पहले श्लोकार्थ समझ लो, प्रशांत आत्मा हो आपकी, विगत भी भय से रहित हो जाओ निर्भय होकर के। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचारी का जो व्रत है नियम है उसमें उसका पालन करते हुए, गुरु शुश्रूषा भिक्षाटन और वीर्य धारण माने एक जो यौन पवित्रता है उसकी इस समय बड़ी जरूरत है महाराज। अच्छा मनः संयम्य, मन को समाहित करके ले आओ दूसरे दूसरे जहां से, उसको संयमित करो। फिर मच्चित्त हो करके और मत पर हो करके, युक्त आसीता। अब ये सब शब्द जो हैं बड़े गंभीर शब्द हैं, इसमें थोड़ा सा प्रकाश होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, ये सब पुनरुक्ति मालूम पड़ता है कि प्रशांत आत्मा फिर मन संयम, मन का संयम करेंगे तो हम तो शांत हो ही जाएंगे ना। नहीं, शांत होना अलग चीज है और मन को एकाग्र करना अलग चीज है। वो क्या है महाराज? तो उपनिषद में आपने सुना होगा, ये शांडिल्य विद्या कहती है छांदोग्य उपनिषद में। तो उसमें शांडिल्य ऋषि उपदेश करते हैं, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये वाक्य तो बहुत सुना, तज्जलानिति शांत उपासीत। शांत उपासीत, शांत होकर उपासना करो। उपासना माने ध्यान लगाओ, चिंतन करो ना। तो शांत होना अलग चीज है, ध्यान लगाना अलग चीज है। कहा कि शांत हुए बिना अशांत मन लेकर के आप ध्यान नहीं लगा सकते। बोले महाराज शांत कैसे हो जाए? तो शांत होने का अर्थ है राग द्वेष रहितो भव। राग माने अटैचमेंट, द्वेष विद्वेष दुश्मनी, इससे रहित होकर के चिंतन करो। संसार के प्रति जो आपके राग और द्वेष है ना, वो एक बड़ी बाधा है, हमारे मन को एकाग्र होने नहीं देते। तो कहा कि महाराज लेकिन कैसे, वो संसार में राग द्वेष तो है ही है, अब कैसे उसको शांत करे मन को? तो कहा कि सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलानिति। देखो सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, इसको पहले समझो और भावना करो थोड़ी देर। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, कैसे सोचे महाराज सब ब्रह्म? सुनते तो हैं लेकिन सोचा तो नहीं जाता, सब तो अलग ही अलग दिखता है। तभी तो किसी में राग है किसी में द्वेष है। तो कहा कि तज्जलान इति, देखो सब उसी से उत्पन्न हुआ, उसी में टिका हुआ है, उसी में विलीन हो जाएगा। जैसे समुद्र से तरंग उठते हैं, उसी में टिके हैं, उसी में विलीन हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार ये जो सारे फिगर्स है, जिसमें किसी में हमारा बड़ा राग होगा, प्रेम होगा, किसी से द्वेष होगा और बाकी उपेक्षणीय होगा, तो ये जो आकृति है एक विशेष, ये आकृति कैसे बना? जैसे मूर्तिकार मिट्टी से बनाते हैं कि नहीं प्रतिमा, तो ऐसे पंचभूतों से बने कि नहीं? हा? हमने देखा कि वो समुद्र तट पर ना बच्चे गुब्बारे उसमें हवा भर के इतना बड़ा हो जाता है, और उसमें तरह तरह के चित्र है तो ऐसा दिखता है। अब देखो इस गुब्बारे को किसने फुलाया? हवा भी भर दिया इसे महाराज है। अब जब तक हवा भरा है तब तक जो है वो सब काम करता है, फिर हवा जब निकल गया तो गया है? तो ये इकट्ठा करके एक आकार दे देना और इसको बनाए रखना और फिर इसको विलीन कर लेना, और ये जो अच्छे बुरे चेहरे देख रहे हो, माने आपको जो सुंदर असुंदर आदि प्रतीत होता है, ये सब तो है ही, मिट्टी पानी हवा और कुछ है इसमें।
तो जितना आप तत्व पर ध्यान देंगे उतना ही आपका राग द्वेष कम होगा। और ये आवश्यक है भैया, थोड़ा ज्ञान विचार विवेक थोड़ा आवश्यक है। असल में ये इंटीग्रेशन है, मन को जबरदस्ती किसी में लगा देना ही ध्यान नहीं है, वो एक एस्पेक्ट है खाली। उसको ये जो पूरे अपने आप को इंटीग्रेट करके सब तरफ से उसको इकट्ठा करके, हाँ समेट करके, तब भगवान में लगाना है। तो इस प्रकार से तज्जलान इति, ये सारा जो जिसमें आपका राग, खास करके जहां पर राग है, जब आप बैठो तो उस समय पहले देखो, अच्छा इस समय जो है कोई राग वृत्ति हमारा उभर रहा है, किसी के बड़ी प्रियता पूर्वक चिंतन हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उस समय एक सामान्य रूप से सब ब्रह्म है ऐसा सोचना है, हो रहा है तो उस विशेष व्यक्ति में आपको ये चीज अप्लाई करनी है ना, देश में भी। तो एक बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ती है, कल भी मैंने बताया, हम लोगों की दृष्टि कितने कम है। देखो प्रायः आप जिससे प्रेम करते हो उसको देखते नहीं हो, प्रेम आत्मा से ज्यादा होती है, इसलिए जब आत्मा का प्रकाश वहां कम हो जाता है तो उस शरीर को हम लोग फेंक देते हैं या जला देते हैं, ठीक है ना। शरीर से प्रेम तो होता है लेकिन उस शरीर को हम चिपका करके रखते नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस शरीर के भीतर से एक प्रिय, एक सुख देने वाला एक प्रकाश, एक मैनिफेस्टेशन जो हो रहा है, ये कहां से हो रहा है, इसका मूल कहां है। तो जितना आप जाएंगे तो अंततः सर्वम खलु इदम ब्रह्म, है ना। आकार से घबराओ नहीं, आकार में राग द्वेष होता है, तत्व में राग द्वेष नहीं होता है। तो इसका इसलिए ब्रह्म अगर नहीं सोच सकते हो तो ये सब के सब पंचभूत मात्र है, मिट्टी पानी हवा यही सब है, अब सब आकृतियां ही तो है और क्या है। तो इस प्रकार से जब अपने आप को आप समझाते हैं शांत होता है चित्त। चित्त शांत क्यों नहीं होगा, उसको समझ में आएगा तो शांत होगा। तो इसीलिए प्रशांत आत्मा, हमने समय का अभाव है नहीं तो हम आपको थोड़ा और विस्तार से बताते, दुर्गा सप्तशती का जब प्रवचन हो रहा था कई वर्ष पहले ना, तो एक दिन ध्यान कराया था आपको, तो चाहे तो उसको फिर सुन लेना। भूत शुद्धि करके एक चीज हमने वहां पर आपको बताया था कि शरीर में क्या है, भैया मिट्टी है तो मिट्टी जो है ये समष्टि मिट्टी का अंश है, मैं नहीं मेरा नहीं। पानी है, पानी इस जल का अंश है। गर्मी है, ये समष्टि तेज का अंश है। वायु है, समष्टि वायु का अंश है। और आकाश है, समष्टि वृष्टि समष्टि का एकीकरण। और जितना आप एकीकरण करोगे, ये जब पूजा करने बैठते हैं ना साधक, तो उसको आसन शुद्धि फिर भूत शुद्धि करनी पड़ती है। तो ये जो भूत शुद्धि है, ये पंचभूतों को, पंचभूतों का बनाया हुआ शरीर को सारे समष्टि को सौंप दो, और जितना आप इसको दे दोगे मैं नहीं मेरा नहीं, उतना ही आपका चित्त इसमें से मुक्त होता जाएगा। तो प्रशांत आत्मा बनो, शांत हो जाओ, फिर जो है ध्यान लगाओ। और ध्यान लगाने में तीन चीज अब आपको इकट्ठा करना है, जैसे मनः संयम्य। अच्छा विगत भी, ये भी एक चीज है कि भय जब बना रहेगा तो मन आपका जो है समाहित नहीं होगा। जितने ही हम लोगों को अपनी सुरक्षा सिक्योरिटी का चिंतन रहता है ना, दुश्चिंता है कि मेरा क्या होगा, ऐसा क्या, वैसे ही उतना ही हम लोग ध्यान में डूब नहीं सकेंगे।
भय के साथ में नहीं होता है काम। तो इसलिए निर्भयता आनी चाहिए और निर्भयता आएगी जब आप ईश्वर का आश्रय लेंगे। एक स्वामी जी कहते थे, बड़े उच्च कोटि के संत थे, कहा कि भैया हम जो है इसलिए ब्रह्म चिंतन में मग्न नहीं हो सकते कि हम लोगों को ये डर रहता है कि फिर आश्रम चलेगा कैसे। अगर हम ब्रह्म ही चिंतन करने लग गए तो फिर आश्रम चलेगा कैसे, ये भय रहता है। जैसे आपका घर कैसे चलेगा, व्यापार कैसे चलेगा, ऐसा हम लोगों का आश्रम कैसे चलेगा। अब भैया जब तक भय लगा रहेगा तब तक आपको जो है फिक्र रहेगी और आपका मन पूरी तरह डूबेगा। तो अंततः इसकी सफलता के लिए तो भगवान का आश्रय लेना पड़ता है। दूसरा प्रैक्टिकल आस्पेक्ट से भी देखना चाहिए। अब आप ऐसे जंगल में चले गए जहां पर शेरी वो गर्जना कर रहा है, तो ऐसे जगह जाओ मत भैया। जहां थोड़े सेफ हो, जहां सांप बहुत हो, हाँ आपको अगर अपना माने वो परीक्षण करना है जाओ, लेकिन अब आप ध्यान में बैठो और बार बार ऐसा लगे कि सांप तो नहीं आ जाए, तो इसलिए वो थोड़ा देखना चाहिए कि इसीलिए मनोनुकूल है, जहां आपका चित्त थोड़ा निश्चिंत हो जाए, ये आवश्यक है। ये विगत भी और मन संयम में मत चित्त युक्त आसीत मत परा, तीन चीज है, मन का संयमन करना, मत चित्त होना और मत पर होना, ये तीन बड़ी अहम चीज है। तो मन का संयमन समझ लो किसी एक चीज में मन को लगा देना, ये एकाग्र करना, ये तो हम लोगों को करना ही है, ये तो कॉन्शियस एफर्ट है। मत चित्त का मतलब ये होता है कि हमारा चित्त का, हमारे मन का एक रागात्मक पक्ष है, राग पक्ष। हमारे मन के ना तीन उसके एस्पेक्ट्स है, एक अंग्रेजी में कहे तो नोइंग ज्ञान पक्ष, फीलिंग भाव पक्ष और विलिंग क्रिया पक्ष, ये तीन चीजें हैं, जानना करना और भाव अनुभव करना। तो ये भाव पक्ष क्या है, जैसे किसी से आपका प्रेम है, भाष्यकार ने यहां उदाहरण दिया, स्त्री चित्त कश्चिद रागी, किसी से आपका बड़ा प्रेम है, तो ये प्रेम होना का मतलब होता है कि ये चित्त उनके साथ है आपका, ये चित्त, ये अलग अलग शब्द प्रयोग किया ना, मन चित्त है ना, बुद्धि, ये सब अलग अलग शब्द, तो उसके कुछ विशेष अर्थ भी होता है। तो हमारा जो राग पक्ष है, जब हम ध्यान लगा रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं या आत्म ध्यान कर रहे हैं, तो हमारा जो रागात्मक पक्ष है, अर्थात जब किसी से आपका प्रेम हो और वो व्यक्ति आपके सामने आ जाए, बच्चा हो, अपना पति हो, पत्नी हो, तो कैसा होता है आपको, कैसे आपके मन का वो वृत्ति होती है कि उसको कैसे पकड़ते हैं, है ना। और जिनसे प्रेम नहीं है उनके साथ आप कैसे बर्ताव करते हो। तो प्रायः हम लोग जब ध्यान लगाते हैं तो इस राग पक्ष को परमात्मा से नहीं जोड़ते। तो चित्त से राग पक्ष को जोड़ना, समय हो गया इसलिए कल इस पर थोड़ा प्रकाश डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, हम मिसिंग होती है हमारे ध्यान में, बड़ा मैकेनिकल इसलिए बन जाता है। तो कैसे हम अपने राग पक्ष को, इसको हृदय पक्ष भी बोल सकते हो, है? तो अपने दिल को कैसे जोड़े, ये है मत चित्त, दिल तुम्हारा मेरे में दे दो। और मत परह, मैं ही परम सत्ता हूं, भगवान कह रहे हैं, सर्वोच्च सत्ता हूं, सर्वश्रेष्ठ सत्ता हूं, ऐसा अपने भीतर निश्चय रखो। मत परहा माने क्या होता है, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि कोई अपने स्त्री से प्रेम करता है लेकिन वो भगवान को या राजा को परम मानता है, सुप्रीम ना, माने जब चाहे संकट के कारण हो जो भी हो स्त्री का आश्रय नहीं लेंगे, आश्रय तो उनको लेना पड़ेगा, प्रेम इनसे होता है जैसे बच्चों से प्रेम होता है। तो हम लोगों के भीतर एक श्रेयस बुद्धि है, एक प्रेयस बुद्धि है। श्रेय का मतलब होता है कि मेरा हित किस में होगा, और प्रेय पक्ष होता है अच्छा क्या लगता है, प्रिय क्या लगता है, ठीक है ना। अब ये दोनों पक्षों को महाराज वहां जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो भगवान श्रेष्ठ भी मालूम पड़ना चाहिए और प्रेष्ठ भी मालूम पड़ना चाहिए। इसके बाद कल थोड़ा सा स्पष्टता से बोलना होगा कि तीन चीज, और फिर मन को एकाग्र करना होगा, ठीक है ना। तो श्रेय पक्ष माने ज्ञान पक्ष, चित्त माने प्रिय पक्ष, और मन माने क्रिया पक्ष। ये ज्ञान पक्ष, राग पक्ष या भाव पक्ष और क्रिया पक्ष, तीनों को समेट करके लगाएंगे तब ना डूबेंगे। तो इसलिए योग एक इंटीग्रेशन है। खाली बहुत लोग इसलिए इसको ठीक से समग्रता से नहीं समझ पाते, अब झट से जो हमको योग ये सब तैयारी करने में भीतर से कितना समय लगता है, कितनी मैच्योरिटी लगती है, तो थोड़ा धीरज भी रखना चाहिए साधक को, होगा है? और धीरे धीरे करो। भगवान भी कहते बहुत जल्दीबाजी क्या है भैया, हमने जो है तुम्हारे लिए कोई बहुत ऐसा कहा कि दो साल में पूरा कर लेना है, ये तो तुम सोचते हो कि हमारे मृत्यु आ गया। अरे मृत्यु कहाँ आता है, फिर नया शरीर दे देंगे ना भगवान इसमें सारा गारंटी दे ही रहे हैं। इसलिए उसका फिक्र ज्यादा मत करो कि हमारा टाइम कम है, अगर फिक्र ज्यादा कर रहे हो तो गड़बड़ कुछ और है, ये करके कुछ और करना है तो इसलिए बड़ी निश्चिंतता से और अपनी पूरी सजगता के साथ इस सारे पक्षों को समेटे और उनमें लगाए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।